तो हम लोग भगवद गीता के अंतिम पड़ाव में हैं। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 74 18वां अध्याय। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तो अर्थ समझ रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है। इति अहम्, इस प्रकार मैंने वासुदेव और पार्थ दो महात्माओं के, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण और पार्थ मतलब अर्जुन, इन दोनों के मध्य संवाद को, इमम इस संवाद को सुना, श्रोषम मैंने सुना। और वो संवाद कैसा है? अद्भुतम रोम हर्षणम। एक थोड़ा साइड पॉइंट इसमें है, या साइड पॉइंट कह सकते हैं, एक मतलब सूक्ष्म विचार ये है कि जिस भी वस्तु से हमको रस मिलता है उसमें अद्भुत रस जरूर होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, तो रसगुल्ले के रस में आश्चर्य रस जरूर होना चाहिए। किसी भी रस का अनुभव करने के लिए आपको आश्चर्य रस का अनुभव जरूर करना चाहिए। पार्थ, अगर आपके पास फोन है तो उसका फाइल शेयर कर सकते हैं, नहीं उससे बहुत आवाज आती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, अद्भुतम रोम हर्षणम, उनके रोम रोम पुलकित हो रहे थे इसको सुन करके। आज जब मैं इसकी क्लास की तैयारी कर रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए भगवान कौन है, तो आप बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं कृष्ण, और वही परमात्मा है, वही सबके पालन करता है, सब कुछ बहुत आसान लगता है। लेकिन अगर किसी ने भगवद गीता नहीं सुनी है तो ये उसके लिए रहस्य ही रहेगा। वो तो इस बात पे भी विचार करेगा कि क्या भगवान है या नहीं है, हैं क्या, ऐसा करके प्रश्न करेगा। आकाश, आपको भी मैंने फाइल भेज दिया था, स्मार्टफोन में आपके है, हाँ जी, फाइल देखिएगा जरूर। तो रोम हर्षित मतलब ये ज्ञान इतना चमत्कारिक है, इतना रसमय है, उसको सुन करके उनको पुलकित हो रहे हैं, बहुत अद्भुत लग रहा है उनको, ठीक है, ये बोल रहे हैं। ओके, वन सेकेंड। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हम फिर से एक शब्द पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, संवाद। संवाद का अर्थ विवाद नहीं होता है। आपको याद है महाराज जी समझा रहे थे, विवाद मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं और आपकी सुन नहीं रहा हूं, और आप बोल रहे हैं मेरी नहीं सुन रहे। संवाद में दो लोग प्रश्न, दो लोग बातें कर रहे हैं और पहला व्यक्ति शुरुआत में भले ही सामने वाले व्यक्ति की बात से सहमत ना हो या उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, संशय हो, लेकिन सामने वाले की बात सुनता है। जैसे आप देख सकते हैं कि विष्णुदूत और यमदूत आपस में संवाद कर रहे थे, इसी संबंध में महाराज बता रहे थे। विवाद मतलब वो खाली काटेगा, तो हाँ, विरुद्ध, विरुद्धवाद करेगा, यस, सम्यक वाद। अच्छा, शास्त्र की चर्चा होगी और शास्त्र की चर्चा में भी विवाद हो सकता है। मैं आपको खाट रहा हूं, आप मुझे काट रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सम्यक वाद समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तथ्य क्या है, इस पे विचार करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि जो विश्वदूत पूछते हैं कि धर्म क्या है ये बताइए, वैसे तो उनको पता था लेकिन उसमें वो विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। अच्छी बात यहाँ पे आई। तो अर्जुन के मन में संशय थे और उन्हें प्रस्तुत किए थे भगवान कृष्ण के प्रति, और फिर भगवान कृष्ण की बात सुनी कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके आधार पर समझावट उन्होंने बनाया, ठीक है। टीका को देखिए, टीका दिख रही है आप लोगों को? तो यहां इस शास्त्र का उपसंहार हो रहा है, मतलब समाप्ति हो रही है। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कथा समाप्त कर रहे हैं। यह प्रवचन चेतना में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है, अर्थात अद्भुतम, क्योंकि मानव समाज में यह पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये एक बात आप लोगों के मन में आ सकता है संशय कि भगवान तो कह रहे हैं कि ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, तो सत्य बात है, सूर्यदेव को दिया था, राजाओं को दिया था, लेकिन इस प्रकार से सभी समाज में उपलब्ध हो जाएगा इस प्रकार से भगवान ने नहीं दिया था, ओपनली इस प्रकार से नहीं दिया था। इसलिए भगवान की कृपा का भी अनुभव कर रहे हैं कि कितना अद्भुत ज्ञान है और सबको दिया जा रहा है। जैसे आप कभी, आप लोग आगे आ सकते हैं, मैंने प्रसाद ले लिया है, आज मैं व्रत नहीं कर रहा, मैंने आज व्रत लिया कि आज किसी इंसान को नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये कितना अद्भुत है, और इस चीज का भक्त भी अनुभव करते हैं, कालांतर में कि ये ज्ञान मुझे क्यों प्राप्त हुआ, इतना अद्भुत ज्ञान जिसके द्वारा जीव हमेशा अनादि काल के जो फंसा हुआ है जीव वो मुक्त हो जाता है, वो मुझे कैसे प्राप्त हो रहा है, मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है। तो ये तब अद्भुत लगेगा जब उसके विषयों पे आप विचार करेंगे। जैसे कोई रसगुल्ला खाए ही नहीं तो उसे क्या अद्भुत लगेगा। या मान लीजिए जैसे आप देखिए उस दिन वृंदावन चंद्र महाराज की कथा आप लोग को अद्भुत लगी थी कि नहीं, ओ कितना सुंदर श्लोक है, कितना अद्भुत बातें बोल रहे हैं। जो समझ में आएगा उसको अद्भुत लगेगा, अच्छा जिसको नहीं समझ में आया उसे क्या, यस उसको भी अद्भुत लगेगा, अरे क्या था वो क्या था, अद्भुत था, समझ में नहीं आया। लेकिन अद्भुत कोई भी रस अनुभव कर रहे हैं तो उसका अद्भुत आधार जरूर होता है, आश्चर्य जरूर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्थ विचार कर रहे हैं, इतना गुह्य अर्थ है भगवद्गीता का, संजय भगवान संजय जी भी तो इस कारण से उनको अनुभव अद्भुत रस का अनुभव कर रहे हैं और रोम हर्षित हो रहा है उनका, यह मुझे रोमांचित कर रहा है। अच्छा ऐसा सोचिए, ऐसा है नहीं लेकिन मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं और दो मिनट में आपको अपना विश्व रूप दिखाऊं तो आप लोग घबरा नहीं जाएंगे, है ना, आपके मतलब मित्र की तरह बैठा हूं, आपको लग रहा हाँ ठीक है प्रभु जी का ये पांच फुट छह इंच का ढांचा है शरीर का और एकदम से हम विश्व रूप दिखा दें तो आप घबरा जाएंगे। यही तो हुआ था और ये भी आगे के श्लोकों में आया कि सब कुछ संजय जी ने भी देखा था। कैसे देखा था उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देख के चकित हो रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एकदम विराट रूप और सब कुछ जो भगवान ने ऐश्वर्य दिखाए वो देख करके वो रोमांचित हो रहे हैं। सारे सैनिकों ने देखा था नहीं, हमने ऐसा नहीं सुना है लेकिन ये इन्होंने देखा, ठीक है, रोमांचित कर रहा है। तात्पर्य एक बात छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं, एक लीला आप जानते होंगे यमुनाचार्य जी की, यमुनाचार्य जी की, वो राजा बन गए थे और फिर उनके उनके गुरु के शिष्य, नाम भूल रहा हूं कुछ शर्मा या कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूं नाम, कुछ एक ब्राह्मण आए थे उनके पास, राम मिश्र आए थे तो वह उनको उसके बाद लेके जाते हैं, कहते तुम्हारे लिए पिताजी ने, तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। और उसके बाद वो जब लेके जा रहे होते हैं तो गीता के श्लोक पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बचपन में जो गीता के श्लोक सुने थे वही रस उनको वापस प्राप्त हुआ, ओह तो बहुत अद्भुत है, और सुनाइए ऐसे करे करते आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर वह वापस आते ही नहीं, गीता के श्लोक सुन करके, इतना शक्तिशाली है, इतना रसमय है। तात्पर्य भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। स्फुरित मतलब स्फुरित हुई, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको याद आता होगा टीवी जब पहले जमाने में हुआ करता था तो जैसे आप स्विच दबाते हैं तो एकदम से जो चित्र उसके चित्र पटल है उस पर कोई चित्र स्फुरित हो जाता है, एकदम चमक जाता है, हाँ प्रदर्शित हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। स्फुरित मतलब आंतरिक रूप से स्फुरित हो जाता है। तो किसकी कृपा से हुआ था ये, व्यासदेव की कृपा से। और जब व्यासदेव दूसरे के हृदय में घटना को स्फुरित करा सकते हैं तो उनकी स्थिति तो आप सोच ही सकते हैं। जब ये बात मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि शायद आपने सभी सुना नहीं ये बात, लेकिन भागवतम समाधि भाषा है, समाधिस्थ होकर के व्यासदेव का जो साक्षात्कार है वह सारा कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया, कितना अद्भुत ग्रंथ है। और ऐसे ही रामायण भी है, आपको पता होना चाहिए कि रामायण भगवान राम के आने से पहले ही शिला वाल्मीकि जी ने लिख दी थी और वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के लीला ऐसी दिख रही जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। तो ये सब रिवील्ड ज्ञान, हाँ यस, आने से पहले, आज ही मैं महाराज की बात सुन रहा था, आने से पहले लिख दिया एज इफ कि सब घटनाएं हो चुकी हैं। और हम लोग सुनते भी हैं, आप देखिए श्रीमद् भागवत में कितनी बार सुनते हैं कलयुग में ये होगा, ये आएंगे, ये होगा, ये आएंगे, जैसे उनको उसमें स्पष्ट दिख रहा हो, बिल्कुल उनको दिखाई पड़ता है, कहते हैं त्रिकालज्ञ। माइक पे बोलिएगा अगर कुछ बोलना चाहते हैं, ऑन तो कर
लिया था कि आप जो लिखोगे भगवान राम को वही लीला करनी पड़ेगी, ये है
कहने का अर्थ है। देखिए ये तो आप जानते हैं कि ये तो कहने का तरीका है, भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, करते हैं, लेकिन भगवान पुत्र इंडिपेंडेंट है, लेकिन भगवान की लीलाओं को स्पष्ट रूप से वो देख पा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, व्यासदेव की कृपा से। अगर उसको दूसरी तरह से देखिए, दुनिया में बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, वो कैसे पहुंचता है हमारे पास, आप एक्सप्लेनेशन चालू कर देंगे लेकिन किसी को पता नहीं है, तो कृपा से ही तो पहुंच रहा है हमारे पास। कोई मान लीजिए कथा कहीं चल रही है और आपके पास लाइव टेलीकास्ट आ रहा है तो करने वालों की कृपा से हो रहा है, हमारे पास शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से व्यासदेव जी कृपा करके स्फुरित कराए थे। ठीक है, माइक पे पूछिए, पूछ रहे हैं। तो
जब रामायण हुआ था तब वाल्मीकि जी भी थे,
रामायण ना तब भी थे, क्योंकि उन्हीं के आश्रम में माता सीता आई थी। वो खैर अलग पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि सभी लोगों को ये शास्त्र से कहते हैं रिवील्ड नॉलेज, प्रकट किया गया। ठीक है, इस प्रकार उसने युद्धस्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, यानी कि रसमय भी थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। बहुत सुंदर बात है, जैसे कौन दो लोग बात कर रहे हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दो सब्जी बेचने वाले बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं करेंगे। पूरा ऐसा नहीं है कि वहां पे कैमरे लग जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं दो सब्जी बेचने वाले। हाँ, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर दो बात करते हैं, हमें मालूम भी नहीं चलता, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, मालूम भी नहीं चलता क्या बात कर रहे हैं। हो सकता मुस्कुरा ही रहे हो, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहे होंगे क्योंकि महान व्यक्ति हैं। ये प्रभुपाद बोलते हैं कि जिस प्रकार से शेयर मार्केट में गीता का प्रवचन नहीं होगा, उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त, शुद्ध भक्त अर्जुन को भगवान जब ज्ञान दे रहे हैं तो बहुत गुह्य दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना चाहिए। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। इसको समझ लेना चाहिए कि महत्वपूर्ण और आश्चर्यप्रद क्यों है। भगवान कृष्ण की ऐश्वर्यता को, महानता को जब तक जीव समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं और समझेगा नहीं, तब तक उनके वो शरणागत नहीं होगा। और हम जगत में बहुत सारे कार्यों को महत्व देते हैं, लेकिन केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो है भगवान के शरणागत होना। जैसे स्वप्न में किए गए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम स्वप्न से जगें। तो जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य को नहीं सुनते हैं, तब तक सोचते ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, या ये भगवान भी महत्वपूर्ण है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भगवान के महात्म्य को समझते हैं, भगवान की महत्ता को समझते हैं, तो महत्ता कब समझेंगे, जब भगवान बताएंगे अपने शक्तियों के बारे में, अपने बारे में। ठीक है, जैसे जब मैं सदोरा में था तो मैं क्लास दे रहा था और बड़ी 15th अध्याय का था कि सूर्य क्यों उग रहा है। आपने कभी सोचा है, भगवान गीता में बताते हैं 15th अध्याय में कि सूर्य का तेज मुझसे आता है, ऐसा कहना क्या वो चाहते हैं। वो कहना भगवान के द्वारा चल रही है ये तो है, लेकिन वो बहुत गहरी बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे सूर्य उगता है तो भोगी लोगों को प्रेरणा देता है, वो करो। तो भगवान सूर्य के उगने के द्वारा लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं भोग करो, और भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं योग करो। तो इस जो प्रकृति का दो कारण है, एक कि आप जब भोग करना चाहो तो भोग करो और योग करना चाहो तो योग करो, दोनों की सुविधा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें बड़ी गुह्य ज्ञान है। इसको जब व्यक्ति सुनता है तब समझ में आता है कि भगवान किस प्रकार से इस जगत को क्रियान्वित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जितना वह भगवान के ऐश्वर्य को हम समझेंगे, उतना ही भगवान की शरण लेने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आश्चर्यजनक है। कितने आश्चर्यजनक है भगवान श्री कृष्ण। और ये अद्भुत बात है कि सभी कुछ एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। सूर्य को प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा को प्रकाश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वह सब अकेले एक व्यक्ति कर रहे हैं। और ये आश्चर्यजनक है, नहीं लगता आपको आश्चर्यजनक? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, अन्यथा बहुत आश्चर्यजनक होता था। ठीक है, जैसे एक माताजी प्रभुपाद को पूछ रही थी, हम कैसे समझें, उनको आश्चर्य हो रहा था कि परीक्षित महाराज अकेले पूरे विश्व पे राज्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर ये दिया कि तुम्हें जीने की जरूरत क्या है, तुम अब तुम्हें ही देखना है कि तुम 16 माला कैसे करो और 4 नियमों का पालन कैसे करो। लेकिन है ना आश्चर्यजनक। तो उस प्रकार से भगवान के प्रति उनकी शक्तियों को समझ पाता है तो भगवान के शरणागत होता है। कुछ पूछ रहे थे आप? ठीक है, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। अर्जुन का अनुसरण अर्थात जो कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, उसको यथावत स्वीकार करना और उनके कहने के अनुसार चलना। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं वहीं विजय होती। इसके बारे में अगले श्लोकों में आएगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक? एनी क्वेश्चन? ठीक है, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् द्रुह्यम् एतद् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात्। कृष्णात् है योगे योगम् योगेश्वरात् कृष्णात्। साक्षात् कथ्यतः स्वयं। तो बड़ा स्पष्ट है व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यासदेव की कृपा से मैंने इसको सुना। वो अपना ही अनुभव बता रहे हैं। अब हमको डाउट करने की, प्रश्न करने की जरूरत नहीं कैसे, क्योंकि हम व्यासदेव नहीं है। ठीक है। और आप ये भी समझ लीजिए कि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे देख पा रहे हैं, खाली वो अनुभव कर रहे हैं कृपा का। दृष्टि दिए थे तो हम सब सुन लिए, तो यही तो बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या कैसे दिए थे वो हम समझ नहीं सकते, इतना समझ लेना चाहिए। अपना अनुभव बता रहे व्यास प्रसाद सत्यवान। एतद् गुह्यम् अहम् परम, इस परम योग को जो बहुत गुह्य है वो मैंने सुना। क्यों परम गुह्य है उसके बारे में भी हम अभी टीका में सुन लेंगे। और योगेश्वरात् योगेश्वर कृष्ण, स्वयं कृष्ण के द्वारा साक्षात कथ्यतः, साक्षात कृष्ण सुन के। जैसे जब हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुनते हैं प्रभुपाद कथा, तो कई बार ये बात आती है कि मैंने ये सीधे प्रभुपाद से सुना है, तो एक अलग भाव होता है ना। जैसे आप लोग अपने गुरु महाराज की क्लास सुनते हैं, कुछ होता है, कुछ कुछ अनुभव होते हैं कि अरे हम महाराज की क्लास में थे, हम साक्षात सुने थे। आप समझ रहे ना मेरी बात। एक होता टेप में सुने थे, किसी और ने बोला, उसने कोट किया, हमने सुना, वो भी सही है, वही बात बोलेगा, लेकिन एक अलग अनुभव होता है, नहीं हमने साक्षात सुना था, यानी कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, मैंने एकदम कान खड़े करके सुना था भगवान की बात को, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और वो सब कुछ देखे भी थे विश्व रूप इत्यादि, परम ज्ञान को, परम योग को। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो स्पष्ट है, हम टीका को देखते हैं। इस श्लोक में संजय अपनी योग्यता बताते हैं, क्यों उनको रोम हर्ष, उनके रोम रोम मतलब पुलकित हो रहा है, क्यों उनको आश्चर्य में रस प्राप्त हो रहा है, और बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह इस संवाद को सुन सके। तो कह रहे हैं जिससे वे संवाद को सुन पाए, क्या योग्यता थी, व्यासदेव के शिष्य थे, व्यासदेव जी चाहते थे वो सुने। श्रील व्यासदेव की कृपा से प्रदत्त दिव्य चक्षु और कान के द्वारा यह रहस्य वह सुन पाए। कान की बात तो समझ में आ रही है, चक्षु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो देख भी रहे थे भगवान को बोलते हुए, केवल वो क्या कहते हैं ऑडियो नहीं था, यूट्यूब चल रहा था। कृष्ण ट्यूब, ठीक है। तो यह रहस्य क्या है, यह रहस्य है योग, यह योग है अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो परम भगवान को प्रकट करता है अर्थात परम। क्या अर्थ है इसका समझ लीजिए, योग का अर्थ क्या होता है, वो कार्य, एक अर्थ तो होता है अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना, लेकिन वो साधन जिसके द्वारा जो एकदम इम्पॉसिबल क्या बोलते हैं असंभव है वो सिद्ध हो जाए। भगवत साक्षात्कार कर करना, भगवत अनुभव करना असंभव है एक्चुअली, लेकिन वह भी सिद्ध हो जाता है योग के द्वारा। और वह योग क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग, और ये भगवान का अलग अलग तरह से साक्षात्कार प्रदान करते हैं। तो अंततो गत्वा भक्ति योग का वर्णन किया जा रहा है जो भगवान का साक्षात्कार देता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ओके, इन सब के बारे में सुना। कर्म योग भगवान का साक्षात्कार नहीं देता, लेकिन भगवान के साक्षात्कार में सीढ़ी है, शुरुआत में लोग एकदम भक्ति योग में नहीं आ सकते, तो कर्म योग करते हैं आपने सुना था, उसके बाद वो ज्ञान योग करते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति योग करते हैं, फिर भगवत साक्षात्कार को जान पाते हैं। फिर थोड़ा विचार कीजिए, अर्थात इस ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमें एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत रहस्यमय है, इतना रहस्यमय है, इतना गोई है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये बार बार प्रश्न कौन देगा कि वाई मी, मेरे को ये ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ, और इससे कृतज्ञता भी बढ़ जाती है कि मुझे ही क्यों प्राप्त हुआ, अगर भक्ति करते रहे तो, अगर करते रहे तो, करते ही रहेंगे मतलब, अगर ये नहीं बोलेंगे इट इज टू मच, मैं हो नहीं रहा है, अभी बहुत हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे, और भगवान को टांग से हमें खींचना नहीं पड़ा तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों रहस्यमय है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। और इस चीज को भगवान ने 90वें अध्याय में बताया था ना, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम, आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, अनुभव प्राप्त कर सकते हो इस भक्ति के द्वारा। ठीक है, मैंने इसे सभी के ईश्वर से सुना है जिनका संबंध देव माना देव मानवादी निखिल प्राणियों से अर्थात योग। यहां पे बता रहे हैं योग ईश्वर क्यों कह रहे हैं, भगवान को योग ईश्वर क्यों कह रहे हैं, योगेश्वर कह रहे हैं ना, तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि इसको मैंने योगेश्वर से भगवान कृष्ण से सुना है जिनका संबंध सभी देवताओं से है, सभी मानवों से है, सभी प्राणियों से। कल हमने चर्चा किया था, इसको थोड़ा समझिए, निखिल मतलब सभी, मैंने टीका से सीधे उठा के हिंदी रख दिया था इसलिए थोड़ा टफ हो रहा समझने में। देखिए निखिल का अर्थ क्या होता है, निखिल का मतलब सभी। हमने कल सुना था कि भगवान अपनी इच्छा से जीव के कर्म के अनुसार प्रकृति के द्वारा और काल के द्वारा सभी के शरीरों को निर्माण कर रहे हैं, सभी मतलब निखिल सभी जीवों के। तो क्या सभी जीवों से भगवान का संबंध है या नहीं, डायरेक्ट संबंध है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक एक व्यक्ति जितना भी जीव, एक मच्छर तक को भी उसको शरीर मिला है भगवान के डायरेक्ट सुपरविजन से, परमात्मा के रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी आगे टीका में भी बात इस बात को आएगी, संबद्धते शब्द इसमें आया है, इसका अर्थात है आगे वाले टीका में आता है कि संबद्धते भगवान का संबंध है। क्या इसमें कुछ डाउट हो रहा है, योगेश्वर मतलब भगवान का ईश्वर के रूप, ईश्वर है मतलब कंट्रोल कर रहे हैं उन सबका, सभी जीवों से संबंध है, सभी के जीवों में से संबंध है, तो समझ में आ रहा है ना। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन चेष्टित, सभी के हृदय में है, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं विभिन्न योनियों में। क्या आपको इसमें आश्चर्य नहीं लगता कुछ, चलिए हम थोड़ा आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। हमने इस जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं ये तो निश्चित रूप से याद नहीं है, और फिर और मुश्किल करते हैं क्या क्या सोचा है और अन्य लोगों से क्या इंट्रैक्शन किया है, इस जन्म का याद है नहीं याद है, पिछले जन्म का तो कोई मतलब ही नहीं, पिछला जन्म ही याद नहीं है, और ऐसे कितने जन्म हम कर चुके हैं कुछ भी याद नहीं, लेकिन भगवान सब हिसाब रखे हैं और उसके अनुसार हमको फल प्रदान कर रहे हैं। और ये केवल एक व्यक्ति के जीवन का कह सकते हैं हिस्ट्री है, फाइल है, फाइल है, और ऐसे असंख्य जीव है सबकी फाइल भगवान मैनेज कर रहे हैं, और न सिर्फ मैनेज कर रहे हैं अपितु देवताओं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वे भी मैनेज कर सके उनके बिहाफ पे। यमराज जी के जो हाँ गुप्तचर हैं, चित्रगुप्त हैं, लेकिन वो केवल इंसानों का करते हैं, सभी प्राणियों का नहीं करते, और भी पापी लोगों का करते हैं। एग्जैक्टली तो आप ये सोचिए ना कि वो यमराज जी को शक्ति कौन दे रहा है, तो इस प्रकार से देखना चाहिए भगवान का। भगवान को इस बात को बोलते हैं पश्चिमय योगम ऐश्वर्यम, अद्भुत भगवान का ऐश्वर्य है, अद्भुत रूप से भगवान हर जीव से संबंधित है। मैंने इसे स्वयं रूप कृष्ण के स्वमुख से सुना है, न कि किसी अन्य व्यक्ता के द्वारा परंपरा में अर्थात साक्षात कथ्यता, अर्थात चाइनीज विस्पर जानते हैं, चाइनीज विस्पर होता है मैं कुछ इनको बोलूंगा, मैंने कहा आप बताना उनको वही बात, उतनी देर में वो कुछ बोलेंगे बीच में कुछ चेंज हो जाएगा, फिर ये उनको बोलेंगे कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने सुनी सुनाई बात सुनी हो, साक्षात कृष्ण से सुना है। तो आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया, प्रभु जी कल तो आप बोल रहे थे कि परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना तो कृष्ण के से ही सुनने के बराबर है। हाँ, उस ज्ञान को प्रिजर्व किया जाता है, आचार्य लोग प्रिजर्व करते हैं और हम सुनते हैं, उससे में लाभ होता है, फिर भी अगर कृष्ण साक्षात बता रहे हैं तो उसका भी एक अलग प्रभाव है। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी साक्षात आपको क्लास दे रहे हैं तो उसका एक प्रभाव अलग है, इज़न्ट इट। तो इस बात बोल रहे हैं कि इसमें एक अर्थ आप समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं साक्षात भगवान से सुन के आ रहा हूं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। देखिए हम सब लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जिस दिन भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा फिर भी कोई डाउट रहेगा, फिर भी कोई पूछेगा कि कहां लिखा है, गीता में तो लिखा है, हम देख के आए भाई, हम साक्षात देख के आए कि भगवान है, कृष्ण है ना। तो इसी प्रकार का अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं साक्षात कथ्यतः। निखिल मतलब सभी, अखिल निखिल एक ही बात होता है, ठीक है ना, अखिल भारतीय बोलते ना, संपूर्ण भारतीय, उसी तरह से निखिल मतलब सभी जीवों का, ठीक है। इसी के द्वारा संजय अपने भाग की प्रशंसा करते हैं, बहुत सुंदर बात है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, ध्यान देना चाहिए। भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि मुझे साक्षात कृष्ण से सुनने का मौका प्राप्त हुआ। किसकी कृपा से? व्यासदेव जो उनके गुरु हैं। बड़ा जादू ही लगता है लेकिन सब कुछ है इस प्रकार से। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके, तो स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए। प्रत्यक्ष कृपा लिखा है उसमें, इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, मुझे लगता है इसमें मिस्टेक है कुछ। कृष्ण होना चाहिए, कृपा नहीं होना चाहिए, कृष्ण को। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं तो हमारी समझावट में कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे कृष्ण हैं साक्षात, तो उनको वैसे ही समझना चाहिए। ठीक है, छोटा सा लीला है, छोटा सा लीला कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने षटभुज दर्शन दिया था, तो उनको अनुभव हो गया कि भाई ये भगवान है। अब उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को बताया कि ये भगवान है, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में महाप्रभु लौट रहे थे, उनके मुंह से फेन निकल रहा था, शरीर पे मट्टी लग गई थी, तो उनके मन में डाउट आया ये भगवान है। तो फिर उसी रात उनको स्वप्न आया और महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह से बाहर आ रहे थे, और जगन्नाथ जी के विग्रह में फेन बाहर आ रहा था और मट्टी लगी हुई थी, और जब वह महाप्रभु को स्पर्श करने के लिए स्वप्न में जा रहे होते तो महाप्रभु पीछे जाते, कहते आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, मेरा स्पर्श मत कीजिए, और फिर मुस्कुराते हुए गायब हो जाते। तब उनको समझ में आ गया कि महाप्रभु जो है साक्षात कृष्ण ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि शुरुआत में हमें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, फिर जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे एक दिन हमें अनुभव भी प्राप्त होगा उसके अनुसार गुरु की कृपा से। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। एक एक लाइन इतनी जबरदस्त है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। टेलीस्कोप समझते हैं आप? टेलीस्कोप समझते हैं। टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत दूर की वस्तु आपको बहुत पास दिखती है, तो उसमें बीच में बहुत सारे लेंस होते हैं और वो लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो लाइट को आने देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हर लेंस बहुत दूर की वस्तु को आपके थोड़ा पास लेके आया है, फिर दूसरा वाला लेंस उसको और पास लेके आता है, तीसरा लेंस जो आपके करीब है, ध्यान दीजिएगा जितना लेंस आपके करीब है वह उतना और दूर की वस्तु को और आपके पास लेके आ जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं? और वस्तु को कोई परिवर्तित नहीं करते, जो वस्तु है, वस्तु अस्थि कृष्ण, वही सामने आपके प्रस्तुत किया जा रहा है ना। तो ये गुरु का कर्तव्य है, गुरु को चेंज नहीं करते हैं, वही भगवान को शिष्य के सामने उसकी समझने की योग्यता के अनुसार प्रस्तुत करते हैं ताकि वह कृष्ण के और करीब जा सके। ठीक है, गुरु परंपरा का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? जो व्यक्ति गुरु परंपरा में जितना दासानुदासानुदास भाव में होगा उसको और उतना अधिक कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है जैसा अर्जुन ने किया। मतलब जिस प्रकार से अर्जुन का ज्ञान नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ, वैसा ही प्रमाणिक गुरु से सुनने वाले व्यक्ति का भी नष्ट होगा। और आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके कितने लोगों के जीवन में अज्ञान नष्ट हुआ। संसार भर में अनेक योगी हैं लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। तो स्पष्ट है, छोटे छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेषाम। अनेक योगी हैं अर्थात कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, इस प्रकार के हैं, लेकिन सभी के ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और एक और अर्थ आप देख सकते हैं इस श्लोक का, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतिना अंतरात्मना श्रद्धावान भजेते तो यो माम समय युक्त तमो मता। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपने हृदय में श्रद्धा से प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, स्मरण करता है। तो यानी कि भगवान में अपने चित्त को एकाग्र करने वाला योगी सर्वश्रेष्ठ है, तो जो उसके ध्यान के विषय है वो कौन होंगे? समझ में आ गया, कितने श्रेष्ठ होंगे, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करता है। तो यानी कि कृष्ण कितने सर्वश्रेष्ठ, विषय कितना मतलब जो सोच रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके जो जिसके बारे में सोच रहा है वो कितना सर्वश्रेष्ठ, तो योगेश्वर इसी अर्थ में कहा जा रहा है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वह गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। तो उसमें कुछ समझाना नहीं है। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वह कृष्ण को साक्षात दर्शन, कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि संजय जी ने व्यासदेव की ऐसी क्या सेवा करी जिससे वो प्रसन्न हुए, लेकिन शिष्य है तो कुछ सेवा जरूर की होगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि संजय के शिष्य जो है वो कोई बहुत अच्छे शिष्य नहीं है। संजय जी के जो श्रोता है धृतराष्ट्र, वो कोई डिवोटी है ये कहना नहीं है, लेकिन उनको भी स्पेशल कृपा मिल रही है कि संजय को डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको डायरेक्ट रिले उनको कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मुनि यहां योगी की बात हो रही है, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह ज्ञान को समझ सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, इससे पहले वाले में हम क्या पढ़ रहे थे, जो हाँ जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है वह प्रत्यक्ष ही कृष्ण का अनुभव करता है। तो यानी कि इससे हमने दोनों चीजों को जोड़ दीजिए, कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कौन कर पाता है, जो परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार करता है, ठीक है। तो हाँ एक मिनट, प्रभुपाद जी यहाँ पे साक्षात्कर्त्यता को समझा रहे हैं कि परंपरा में भी, प्रामाणिक परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, वह भी भगवान से सुनने के ही समान है। यस बोलिए।
मतलब भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष वही देख सकता है जिसको प्रेमांजन चक्षु हो, मतलब भक्ति हो, तो भक्ति के द्वारा ही इस गुह ज्ञान को समझा जा सकता
है। यस, और प्रेम समझ पाए इसका, प्रभु जी ने थोड़ा सा तेज जल्दी जल्दी बोल दिया। भगवान को प्रत्यक्षता वही व्यक्ति देख सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो, और प्रेम किसको प्राप्त होगा, जो परंपरा में ज्ञान स्वीकार करेगा, ठीक है। व्यासदेव ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, इंद्रिय शुद्ध हो गई, सबका अर्थ यही है कि हृदय में प्रेम जागृत हो गया। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता था, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता, अधूरा नहीं होना चाहिए, अधूरा होना चाहिए, अधूरा मतलब बिना एक्सेल के, ऐसा नहीं है, टाइपिंग एरर है, अधूरा रहता है, विशेषता जहां तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों, व्यक्ति बुद्धि का कितना भी तेज हो वह भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान के गुण अचिंत्य हैं। तो वो व्यक्ति जो भगवान के, जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, वह भगवान के अचिंत्य गुणों को समझ करके उसका व्याख्यान करते हैं, तो उसको श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, और नहीं तो महान महान क्या है वो श्लोक, वायु रफा अथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, बहुत सारे मुनि मंथन करते रहते हैं लेकिन भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जितने भी भक्त हैं जिन्होंने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है, श्रद्धा से स्वीकार किया और भगवान की भक्ति करके प्रेम प्राप्त किया और उसी के अनुसार वर्णन किया, तो जब हम वैसे समझते हैं तो हम समझ सकते हैं, अन्यथा भगवान के बारे में हम अटकलबाजी करके कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। आज मुझे एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान ईश्वरत्व का अर्थ क्या है कि जितने भी परस्पर विरोधी गुण है उनका सामंजस्य उसमें हो जाता है, वो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। मान लीजिए कहूं कि बुद्धू से बुद्धू है और बुद्धिमान से भी बुद्धिमान है, तो ये कैसे हो सकता है, या तो बुद्धू कहिए या बुद्धिमान कहिए, दोनों कैसे हो सकते हैं। लेकिन भगवान जो है, कहीं पे एक श्लोक आता है ना, श्लोक नहीं, एक लीला में आता है कि कृष्ण से माता यशोदा कुछ पूछती हैं, तो कृष्ण कहते हैं मेरे को नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या किस संबंध पूछती हैं, लेकिन कुछ पूछती हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं मेरे को नहीं पता, और दूसरी तरफ भगवान जो है सर्व क्या कहते हैं, वेदाहम समति तानि, मैंने किसी लीला में महाराज बता रहे थे, वो भी याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को याद आ रहा है कुछ, कृष्ण को कुछ माता यशोदा पूछती हैं कि कुछ तो है नहीं हो, या फिर जैसे मान लीजिए भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन वो कुछ माता यशोदा कुछ उठाने के लिए कहती हैं, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि माता यशोदा क्या पूछती हैं, लेकिन कुछ पूछती हैं। माइक पे बोलिए, ऑन तो करिए।
तो भगवान मैया यशोदा बोल दी तो आप बिल्ली से क्यों डर जाते
हैं? यस, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि नरसिंह देव, वो कहते मैं ही नरसिंह देव था, तो कहते नरसिंह देव तो तुम थे लेकिन यहां देखते हैं बिल्ली से डर जाते हो। तो भगवान के अंदर विरोध, परस्पर विरोधी गुण हैं, और इस कारण से जो मुनि क्या कहते हैं मुनिन्द्र भी हों, महान महान मुनि भी हों, उनको वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए परंपरा में ही ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो भगवद गीता भी इसी प्रकार से भगवान से अभिन्न है, इसको वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है जो उस परंपरा में, जो उसे परंपरा में स्वीकार करेगा। ओके, भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का ये भी देखिए टीका में पढ़ा था ना, कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है, इसीलिए परम योगम कहते हैं। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह योगों का स्वामी है अर्थात इन योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। इस लाइन आप समझ पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन सुन रहे हैं फिजिकली देखा जाए, लेकिन संजय दूर बैठे अपने गुरु की कृपा से उसको सुन रहे हैं, और गुरु जी सुन रहे हैं, ऑब्वियसली गुरु जी भी सुन रहे हैं, उनकी कृपा से सुन रहे हैं। तो यानी कि परंपरा में किसी को भी एक भगवद गीता प्राप्त हो रही है तो उसका परम सौभाग्य है। बेसिकली साक्षात सुनने का अर्थ क्या है, अर्थात जो भगवान बोलना चाहते हैं वही अर्थ मैं ग्रहण करूं, मेरी शरण में आओ, मतलब सिंपल नहीं, अब मैं कहूं नहीं, मैंने बोला मेरी शरण में आओ तो मतलब मेरी तो अब यहां घुमाना चालू कर देगा तो फिर अर्थ नहीं हुआ। तो प्रभुपाद बहुत सिंपल बोलते हैं, बहुत सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल, कृष्ण बोल रहे हैं उनकी शरण में जाओ, प्रमाणिक गुरु क्या बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ, नहीं कृष्ण की शरण में जाओ। तो फिर पूछेगा गुरु जी कैसे शरण में जाऊं कृष्ण की, तो गुरु जी सिखाएंगे भक्ति करके, तो ये गुरु जी का कर्तव्य है, ठीक है। कुछ बोल रहे थे आप, कुछ ऑन तो करिए माइक, हाँ यस ऑन करिए बोलिए।
जैसे व्यास जैसे गुरु से अगर मतलब
व्यासदेव जैसे गुरु अर्थात जो परंपरा में हो,
मतलब कहने का जैसे गुरु महाराज बोलते हैं हमने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मतलब उनसे भी सुना है,
हाँ
जैसे प्रभुपाद ने उनसे सुना है,
हाँ
तो प्रभुपाद के शिष्यों उनसे सुना और हमने सुना है,
यस
तो हमने भी उनसे ही सुना है,
उनसे ही सुना है। और ये एक अद्भुत बात है, बहुत आत्म अच्छी बात बोली है, एक वैष्णव अपनी शिक्षा में अपनी कृति में जो लिखते हैं उस पर हमेशा रहते हैं। सुना है ना अपने बात, मतलब जैसे मान लीजिए आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ रहे हैं तो आप उनका संग प्राप्त कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं उनका संग प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं उनका संग प्राप्त कर रहे हैं, वाणी सेवा वाणी संग इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, इसी से हमारी श्रद्धा बनती है। यस, बहुत शक्तिशाली है। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। व्यास जैसा गुरु अर्थात परंपरा में अर्थात भगवान के अर्थ को जो परिवर्तित नहीं करे, इस संबंध में महाराज साहब बोलते हैं कि बहुत लोग व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं लेकिन जो व्यासदेव बोलते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध बोलते हैं। व्यासदेव कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं जो परम सत्य है, और ये लोग क्या बोलते हैं परम सत्य तो निराकार है। तो ऐसे तथाकथित व्यासों को व्यास के सुनने से कोई लाभ नहीं होगा,
उनका मतलब नाम भी वेदांती हो जाए तो अंत करने वाले वेदांत का
वेद का सारे ज्ञान का अंत कर देते। एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं दे आर नॉट वेदांती बट वेदांती, उनके दांत ही नहीं है, उनकी फिलॉसफी में कोई दम नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। बड़ा अच्छा है, ठीक है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। ये सिंपल सी बात है, गुरु व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, उनकी कृपा हमको दे रहे हैं। 76 ये भी कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। राजन संस्मृत्य 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 संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन मतलब राजा, कौन से राजा? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ही राजा, धृतराष्ट्र संस्मृत्य, इसको स्मरण करके देखिए, जब व्यक्ति इस प्रकार की एक्सटेसी में होता है तो जो शब्दों के रिपीटेशन है वह कोई गलती नहीं माने जाते। भगवद गीता में 11वें अध्याय में भी इस प्रकार से कई बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उसमें बताया जाता है कि जब इस प्रकार से एक्सटेसी में कोई भक्त है और वो रिपीट कर देते हैं तो यह है उनकी कोई संस्कृत दृष्टि से गलती नहीं माने जाते। मैं बार बार सोच के, होता ना कई बार बोलते हैं, बार बार सोच करके मेरे को ऐसा लगता है, या हम सोच सोच करके हैरान होते हैं। जनरली हम लोग गीता को सोच इतना नहीं सोचते कि अरे वो श्लोक सोच सोच करके मैं मुहुर मुहुर हो रहा हूँ, बल्कि कहना चाहिए जगत में मैं सोच सोच करके मैं रो रहा हूँ। ये बातें जरूर सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम लोग कई बार सोचते हैं सोच सोच करके, ठीक है, सोचते सोचते। संवादम इमम अद्भुतम, वही अर्थ है, इस अद्भुत संवाद को मैं बार बार सोच रहा हूं। किसके बीच में? केशवार जो नहीं हो, केशव और अर्जुन के बीच में। कैसा संवाद है? पुण्यम। पुण्य का अर्थ है शुद्ध करने वाला। पुण्य का एक अर्थ तो आप समझते ही हैं, पुण्य इकट्ठा करना, लेकिन पुण्य का एक और अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। किससे शुद्ध करने वाला? अविद्या पर्यंत, अविद्या से नष्ट, शुद्ध करने वाला। हृष्यामी च मुहुर मुहुर, हृष्यामी का अर्थ है हर्षित हो रहा हूं, बार बार हर्षित हो रहा हूं। तो जब इससे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए कि गीता को ऐसा नहीं कि चलो कंप्लीट हुई, ये खत्म हुआ नहीं, चलो बस अब हो गया, तो ऐसा नहीं है। जितनी बार उन श्लोकों पर विचार करेंगे आपको हमेशा प्रेरणा मिलेगी। जैसे महात्मा गांधी बोलते थे कि जब भी मेरे जीवन में कोई निराशा होती है तो भगवद्गीता का मैं खोलता हूं और श्लोक कोई मिलता है तो मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से भगवद्गीता को बार बार अध्ययन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और अद्भुत ग्रंथ है। जितना उन श्लोकों को घिसेंगे, विचार करेंगे, उतना ही अधिक उसका अर्थ हृदय में प्रकाशित होता है। माइक बोलिए।
तो बोल रहे थे कि जब गांधी जी बोलते हैं कि मैं जब निराशा होता हूँ तब तब गीता खोलता हूँ, अगर हम हमेशा खोलना चाहिए गीता को?
यस, यानी हमेशा अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें निराशा नहीं होगी। यस, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। कितना सुंदर अनुवाद है, ठीक है। ये देख लेना चाहिए कि भगवान के संबंध जो कुछ भी होगा वह सच्चिदानंदमय है, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। भगवान की वाणी भी इसी प्रकार से, हे राजन धृतराष्ट्र, जब मैं इस आश्चर्यजनक और पुण्य संवाद का स्मरण करता हूं जो श्रोता के अविद्या पर्यंत सभी दोषों को हरने वाला है, तो इससे प्रतिक्षण मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे होते हैं, ये हो रहे हैं। अविद्या मतलब समझ रहे हैं अपने स्वरूप का अवबोध, अवबोध अवबोध अबोध, अवबोध मतलब बोध होना है ना, अवबोध मतलब विस्मरण होता है, अबोध मतलब अवबोध का मतलब क्या, अवबोध मतलब बोध होना, तो अपने स्वरूप का बोध ना होना, ऐसा कह लीजिए। हम नहीं समझ पा रहे कि हम लोग कौन है, तो भगवद गीता को सुनने से आत्मा की जागृति होती है, उसे ज्ञान होता है। जब हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो चित्त में आता रहे हम क्यों क्या कर रहे हैं, पूरा समय केवल शरीर में ही लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? कम से कम थोड़ी देर के तो बल्ब जलता है। प्राय हम लोग का बल्ब कैसा होता है, जैसे दिवाली के बल्ब होते हैं ना जलते बुझते रहते, धीरे धीरे करके वो डिमर लग गया, ऐसा भी करके धीरे धीरे करके वो स्टडी हो जाते हैं, फिर थोड़ा दिव्य ज्ञान स्थिर रहता है, नहीं तो जलता बुझता रहता है। हाँ ठीक है, तात्पर्य भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है, ये पुण्य समझ रहे हैं, पुण्य अर्थात अविद्या का नाश करने वाला ज्ञान है। तात्पर्य भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। यहां प्रभुपाद पुण्यात्मा मतलब वही अर्थ लेंगे, एक्चुअली पुण्यात्मा मतलब जिसका हृदय शुद्ध हुआ है, ठीक है, भक्त बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। ये इंटरेस्टिंग है। जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो उनका बता रहे थे किसी भक्त से सुना मैंने कि उनके वार्तालाप मतलब वार्तालाप नहीं उन लोग के आत्मा नाम की सीरियल आया करते थे स्टार टीवी पे जिसमें गीता के प्रवचन करते थे और मेरे एक रिश्तेदार हैं जो उस वक्त भक्त भी नहीं थे लेकिन वो कहते थे ये बिल्कुल अलग है इन लोगों का प्रवचन जो है वो अन्य तथाकथित प्रवचनों से बिल्कुल अलग है। तो व्यक्ति भगवद गीता को सुनता है अगर सही तरह से सुने तो वाकई उसको लगेगा कि हाँ मैंने ये प्रवचन सुना जो कि अन्य प्रवचनों से बिल्कुल अलग है उसका चित्त में वाकई लाइट जलने चालू हो जाती। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। क्या दिव्य स्थिति है? जब हम भगवान के वचनों को बार बार स्मरण करें चित्त बार बार उधर जाने लगे और ये कब होगा? जब हृदय से गंदगी साफ होगी। जैसे जैसे हृदय गंदगी साफ होती जाती है वैसे वैसे भगवान में चित्त अपने आप जाने लगता है और सब श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। लाइन समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग है। कृष्ण से साक्षात सुनने का अर्थ क्या है? परंपरा। और इससे क्या होगा? भगवत प्रेम। और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो बार बार चित्त आपका उधर ही भगवान की तरफ भागेगा। स्पष्ट है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध होना है होता है प्रबुद्ध नहीं होना चाहिए प्रबुद्ध होना चाहिए प्रबुद्ध होता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। जीवन का भोग भोग नहीं अच्छा शब्द नहीं यूज कर रहे हैं जीवन का सुख कहना चाहिए हाँ सुखानुभव करता है केवल कुछ क्षण के लिए नहीं बार बार। सोचिए आप भगवद गीता के किसी श्लोक का स्मरण करें आप पुलकित हो जाएं आनंदित हो जाएं तो ऐसी स्थिति क्या कब होती है कब अनुभव होता है? जब हृदय में प्रेम होता है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भक्ति के किया गया कोई भी कर्म कुछ भी अंग का आप अनुशीलन करें आपको असीमित सुख प्राप्त होगा चाहे सुन रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं। ऐसा ही प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि क्या ये सर्वश्रेष्ठ है तो कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा नहीं सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है चाहे आप भगवान की आरती कर रहे हैं चाहे संकीर्तन कर रहे हैं चाहे जप कर रहे हैं चाहे भगवान का मंदिर मार्दन कर रहे हैं सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है अगर भगवान में प्रेम है। ये मेन बात है। एक श्लोक और कर सकते हैं अगर आप लोग थक ना गए हो तो। वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोग रोम पुलकित हो रहे हैं तो अभी तो हम लेकिन ये एक छोटा सा है बहुत इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आखिरी वाला हम फिर उसको उपसंहार कल करेंगे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। आप देख सकते हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य समझ में आ रहा है स्मरण करके रूपम अद्भुतम हरे। एक अभी से पहले क्या वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा जो संवाद को स्मरण कर करके मेरे को रोम हर्षित हो रहा था आनंद मिल रहा था अब किस प्रकार से भगवान कृष्ण सार्थिक रूप में हैं और अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं। एक बात विचारनी है कि भगवान नीचे बैठ के दे रहे हैं या ऊपर बैठ के दे रहे हैं? खड़े होके तो दे रहे हैं लेकिन नीचे खड़े होके दे रहे हैं कि ऊपर खड़े होके? ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि सारथी ही बने हुए हैं नीचे से ऊपर ज्ञान दे रहे हैं जबकि ज्ञान तो ऊपर से नीचे आना चाहिए लेकिन अर्जुन नीचे नहीं उतरे। अब कह रहे एग्जैक्टली क्या होगा वो तो वही जानते हैं संजय देख रहे होंगे लेकिन अद्भुत लग रहा है उनको बहुत अद्भुत लग रहा है वो रूप भगवान श्री कृष्ण का उनको स्फुरित हो रहा है। अब पता नहीं हरे मतलब भगवान श्री हरि। अभी अगर टीका में तो कुछ बोला नहीं गया है आप टीका लिख लीजिएगा तो अगली टीका आप बोलाएगा मैं अनुवाद कर दूंगा। ठीक है अद्भुतम हरे मतलब भगवान श्री हरि का। ठीक है हरे ऐसे तो बहुत सारे हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम सर्व मंगल हरे प्रेम दिए हरे मन लेकिन यहां पे बात है कि बस उनका सुंदर रूप है बहुत सुंदर रूप को दर्शन कर रहे हैं। विस्मयो में महान राजन मुझे महान विस्मय हो रहा है राजन और हृष्यामि च पुनः पुनः अष्ट सात्विक विकार आप कह सकते हैं इस प्रकार से प्रकट हो रहा है। ओके हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। यह रूप जो है ये भगवान के विश्व रूप को बता रहा है। तत् यहां भगवान के विश्व रूप को इंगित करता है जिसे अर्जुन को दिखाया गया था। तत्पर भी प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा, अर्थात उस विराट रूप को कौन बोल रहा था, अन्य लोगों ने देखा पता नहीं, कोई बोल रहा था, अन्य लोग नहीं देख पाए थे, केवल अर्जुन देख पाए थे, और कुछ लोग देख पाए थे जो भगवान के भक्त हैं, भीष्म पितामह देख पाए थे, कुछ लोग देख पाए थे, देवता लोग देखे थे यस, लेकिन देवता लोग आकर शरणागत नहीं हुए इन द सेंस, हाँ ठीक है, लेकिन वहां पे उपस्थित लोगों की बात करी जाए तो भीष्म देव इत्यादि भक्त लोग देख पाए थे। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि नहीं, दुर्योधन को विराट रूप दिखाया था तो फिर भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं दिखाया था? सिंपल है, ट्रेलर दिखाया था, मूवी नहीं दिखाई थी थोड़ा सा दिखाया था कि विराट रूप है, उसी में वो बेचारा घबरा गया। और ट्रेलर मतलब होता है, अरे आप साधु हैं आपको पता ही नहीं है पूरा, हाँ पूरा पूरा नहीं दिखाया था, थोड़ा थोड़ा दिखाया था, ठीक है 5 मिनट की पिक्चर ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं उसका विपरीत प्रभाव हुआ था, वो उन भगवान को पकड़ने चला गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके तो ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है महान भक्त मतलब भीष्म देव जैसे आप बता रहे हैं, तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं। एक चीज आपने देखी कि भगवान की कृपा सबसे पहले व्यासदेव, मतलब डायरेक्ट कृपा हुई व्यासदेव के ऊपर, अब व्यासदेव जी ने इच्छा करी कि मेरे शिष्य भी देखें तो उनको भी देखने को मिल रहा है। जैसे फिर वही चैतन्य महाप्रभु की सीधी कृपा हुई सार्वभौम भट्टाचार्य जी पे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने की इच्छा हुई कि भाई मेरा शिष्य भी देखे, मेरे भी शिष्य अनुभव को प्राप्त करे तो उनको भी अनुभव प्राप्त हो। ये होता है सहज रूप से, जो एक प्रमाणिक गुरु हैं उनकी सेवा करते हैं तो उनकी दया भी मतलब उस शिष्य के प्रति जाती, इसके हृदय में भी ज्ञान उदित हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो नारद मुनि भी चाहते थे कि इन्हें भगवत प्राप्ति हो, उनकी साधना उनके प्रयास के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद भी था इसलिए प्राप्ति हुई। आपने सुना है महाराज की बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने प्रयास मात्र से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आशीर्वाद से। सी ये सारा प्रयास क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान और गुरु वैष्णव की कृपा हमारे पर। यस,
हर कोई गुरु चाहते है कि मेरा शिष्य भगवान को प्राप्त करे,
हर गुरु चाहते हैं कि यस हर गुरु चाहते हैं, जैसे हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट समझे, जैसे मैं यहां चाहता हूं कि इधर वाले लोग ना समझें और इधर वाले समझें, ऐसा है क्या? नहीं, मैं कुछ प्रवचन दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं सभी समझें। अब व्यक्ति कितना समझना चाहता है उसकी निष्ठा पे निर्भर करता है। इस बात को लेकर के अभी मैं सुन रहा था, जस्ट अभी सुन रहा था कि जब हम सेवा करते हैं तो निष्ठापूर्वक करना चाहिए, और जब निष्ठापूर्वक करते हैं तो उसका उसका लाभ जो है वो हजारों गुना बढ़ जाता है कि मुझे करना है, मुझे अच्छे से करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और महाराज खुद बोल रहे कि भाई जैसे किसी का पेड़ पे चढ़ने का मन नहीं हो, बेर का पेड़ है वो उस पर चढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आपने बोला नहीं चढ़ोगे तो मारूंगा, तो चढ़ तो गया उसके बाद वो दोहा कुछ बोल रहे थे, उसके बाद बोले कि बोला कि वो तोड़ो बेड़ का पेड़, मतलब बेड़ तोड़ के दो, तो बोलेगा नहीं मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है मतलब उसका उसका मन नहीं है, तो उसके तोड़े हुए बेर से कहां तक पेट भरेंगे? समझ में आ रही बात? मुझे वो श्लोक याद नहीं हुआ था, वो बिहारी को श्लोक था लेकिन बात अच्छा था, बेर पे चढ़ना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती चढ़ा रहे हो, चढ़ भी जाएगा तो वो बेर नहीं तोड़ेगा, और तोड़ेगा भी तो अनमने से, 2-4 तोड़ देगा, बाकी कहेगा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, 1000 बहाने करेगा, मतलब स्वयं का निष्ठा होनी चाहिए। वो बोल रहे थे कि माता अदिति स्वयं पूछती किस विधि से, केना विधि, किस विधि से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे यही चीज ध्रुव महाराज जी बोल रहे हैं, कौन विधि बताइए जो इतना भी मुश्किल हो मैं विष्णु की प्राप्ति करूंगा। यस, तो ये हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए, फिर गुरु की कृपा तो है ही, ठीक है ओके। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। अब अगला वाला श्लोक हम आज नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा है, उस भगवान ने चाहा तो कल उसकी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।